पिछले अध्याय में आपने देखा कि जेसिका जय से मिलने आती है। इस अध्याय में आर्यन जय की जेसिका से मुलाकात पर गुस्सा होता है। जेसिका और विक्रांत की संपत्ति पाने की मंशा पर आर्यन को शक होता है। आर्यन सानवी को जय को जेसिका से मिलने देने पर डांटता है, लेकिन बाद में सानवी के प्रति आकर्षित होता है। जय को अपने माता पिता की याद आती है। आर्यन अपनी माँ से मिलता है जो सदमे में है। अंत में आर्यन सानवी के लिए एक नया एहसास महसूस करता है और वो भविष्य में जेसिका के साथ अपने अतीत को लेकर चिंतित है। ज़ोया को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बाथरूम में पानी ना होने से वो परेशान थी। घर के मर्दों के ऑफिस जाने की तैयारी के दौरान उसे पता चला कि उसके बाथरूम का रेनोवेशन होगा। सारा ने उसे चाचू के कमरे में शिफ्ट होने को कहा, जिसे ज़ोया ने मना कर दिया। अंत में उसे अयान के कमरे के पास वाले कमरे में शिफ्ट होना पड़ा, जिससे वो चिंतित हो गई। परिवार अयान के बदले हुए व्यवहार और जिम्मेदारियों की प्रशंसा करता है, लेकिन ज़ोया अयान से डरती है, जिससे उसकी चिंता बढ़ती है। सुबह किचन में आर्यन राजवंश फ्रिज में से कुछ निकाल रहा था, तभी पीछे से सानवी किचन में आती है। उसने जैसे ही आर्यन को देखा तो उसे लगा कि शायद आर्यन को ब्रेकफास्ट चाहिए। सानवी ने धीरे से कहा, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँ? आर्यन ने बहुत सीधे लहजे में जवाब दिया, रहने दो, ज़रूरत नहीं है। सानवी ने तुरंत कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना सकती हूँ। आर्यन ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैं हल्का फुल्का खा चुका हूँ। फिर कुछ देर रुककर उसने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, कल मैं तुम पर गुस्सा हो गया था। सानवी ने मुस्कुराकर बहुत शांत लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो छोटी सी बात कहकर विषय को वहीं खत्म करना चाहती थी, मगर तभी आर्यन ने एकदम गंभीर आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, तुम दोनों यानी कि सानवी और जय को अकेले बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है। इतना कहकर वो बाहर जाने लगा, तभी पीछे से सानवी ने उसे रोकते हुए कहा, मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? आर्यन रुक गया और बिना पलटे बोला, हाँ कहो, क्या कहना है? सानवी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी, अगर जय अपनी बुआ के साथ खुश है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? उससे मिलने से उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए, इस तरह से उसका डिप्रेशन, अकेलापन भी खत्म हो जाएगा, आखिर उसे भी तो एक फैमिली की ज़रूरत है। सानवी की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ठंडी आवाज़ में बोला, जो बातें तुम्हारे काम की नहीं हैं उनमें दखल मत दो, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सानवी ने धीरे से खुद से कहा, मैं इस खड़ूस आदमी के साथ अपना सिर क्यों फोड़ती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये कैसा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन कृति थी। सानवी सोच रही थी कि कृति कॉलेज के ट्रिप पर गई हुई थी, मगर असलियत ये थी कि कृति अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई थी और अब वापस भी आ चुकी थी। सानवी ने तो रिया को फ़ोन करके बता दिया था कि आज कृति आएगी, उसका ख्याल रखना, इसलिए उसे लग रहा था कि शाम तक कृति घर पहुँच जाएगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कृति एक शोरूम में कपड़े देखने चली गई, उसे महंगे कपड़े चाहिए थे जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। कपड़े ट्राई करने के बहाने वो कुछ ड्रेस ट्रायल रूम में ले गई, वहीं से उसने एक ड्रेस अपने बैग में डाल ली और बाकी कपड़े वापस रखकर दुकान से बाहर निकलने लगी। कृति को लगा कि किसी को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उसने चोरी की है, लेकिन तभी शोरूम का सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे आया और बोला, मैडम एक मिनट रुकिए। कृति ने अनजान बनने की कोशिश की और बोली, क्यों, क्या हुआ? गार्ड ने साफ कहा, मुझे आपके बैग की तलाशी लेनी होगी। कृति ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब गार्ड ने ज़बरदस्ती उसका बैग खोला तो उसमें से वही चुराई हुई ड्रेस निकल आई। कृति गार्ड से बदतमीजी करने लगी, मगर गार्ड ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। उधर जय घर पर बैठा कार्टून देख रहा था, तभी सानवी के फ़ोन पर कॉल आया। सामने से आवाज़ आई, क्या आप कृति को जानती हैं? सानवी ने घबरा कर कहा, हाँ वो मेरी बहन है। क्यों, क्या हुआ? पुलिस ने कहा, तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन आइए, वो हमारे पास है। अब सानवी के सामने बड़ी समस्या थी, जय को वो घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बाहर सिक्योरिटी तो थी, मगर फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मजबूरी में उसे जय को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने जय को एक चेयर पर बिठा दिया और उसका ध्यान बटाने के लिए मोबाइल में कार्टून चला दिया। खुद वो पुलिस अफसर से बात करने लगी, प्लीज़ इसे आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। उसी समय सानवी के फ़ोन पर आर्यन का कॉल आया। आर्यन ने पूछा, जय ठीक है? जय ने तुरंत फ़ोन लेकर कहा, हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं। आर्यन हैरान हुआ, पुलिस स्टेशन? जय ने मोबाइल पुलिस अफसर को दे दिया। पुलिस अफसर ने आर्यन को सारी जानकारी दी कि वे किस पुलिस स्टेशन में हैं। आर्यन उस वक्त पास ही कहीं था, इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके रिक्वेस्ट पर पुलिस ने कृति को छोड़ दिया। जैसे ही सब पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, सानवी ने गुस्से से कृति को डांटा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम तो ट्रिप पर गई हुई थी, यहाँ कैसे पहुंची? इतनी जल्दी वापसी कैसे हो गई? कृति झेंपते हुए बोली, दीदी हम आज सुबह ही मैं और सना वापस आ गए। सानवी का गुस्सा और बढ़ गया। देखो कृति, तुमने जो किया है वो बहुत गलत है, मैं तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं करती थी। फिर उसने कहा, अब घर चलो, रिया घर पर है, मुझे जय के साथ वापस जाना है। कृति को अब तक पता नहीं था कि सानवी ने आर्यन राजवंश की नौकरी ज्वाइन कर ली है। वो मासूमियत से पूछ बैठी, दीदी आप अब कहाँ काम करती हैं? सानवी ने कहा, मैं यही इनके यहाँ काम करती हूँ और मुझे रात को भी यहीं रहना पड़ता है। ये सुनकर कृति की आंखें चमक उठी। वो सानवी के कान के पास झुककर धीरे से बोली, दीदी प्लीज पिछली बार की तरह ये नौकरी मत छोड़ना, इतना बड़ा अमीर आदमी है, इसे तो फंसा ही लो। सानवी उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गई। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। फिर उसने कड़ाई से कहा, अब चुपचाप घर चलो, रिया घर पर है। वो कृति को ऑटो में बैठाकर घर भिजवाती है और खुद जय के साथ आर्यन के साथ घर लौट आती है। गाड़ी में बैठते ही सानवी ने धीमी आवाज में कहा, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जय को साथ नहीं लाना चाहिए था, मगर मैं उसे अकेला कहाँ छोड़ती, आगे से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। सानवी को सच में अफसोस हो रहा था। आर्यन उस वक्त बहुत गुस्से में था, उसका चेहरा सख्त था और वो इतना गुस्से में था कि उसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सानवी खामोश बैठी रही और माहौल भारी हो गया। शाम के खाने का टाइम हो चुका था, लेकिन सानवी का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो अपने लिए सिर्फ एक कप कॉफी बनाती है और लॉन में जाकर बैठ जाती है। मन में उसे कृति वाली बात भी बहुत परेशान कर रही थी। इसी दौरान आर्यन वहां आता है। वो अभी अभी बाथरूम से निकला था और स्विमिंग करने के लिए आया था। उसने सानवी को वहां अकेले बैठे देखा तो रुककर पूछा, जय सो गया? सानवी ने धीरे से कहा, हाँ वो ठीक है, सो गया है। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और थोड़ा आगे बढ़ गया। वो स्विमिंग करने के लिए अपने कपड़े उतारकर शॉर्ट्स में आ गया और पूल के किनारे खड़ा हो गया। सानवी अब भी वहीं बैठी अपनी कॉफी पी रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था। अचानक उसकी नजर आर्यन की तरफ चली गई। वो उसकी बॉडी को देखकर एकदम ठिठक गई।
आर्यन का गठीला शरीर, चौड़े कंधे, लंबा कद और बिल्कुल फिट बॉडी, उसके 6-8 पैक एब्स साफ छलक रहे थे। भूरा गेहूं रंग, स्मार्ट लुक और आत्मविश्वास भरी चाल देखकर सानवी अनायास ही उसे देखती रह गई। कुछ देर के लिए वो कृति की सारी बातें, सारी टेंशन भूल गई। उसकी नजरें बार बार आर्यन पर ही टिक जाती। आर्यन ने जब महसूस किया कि सानवी लगातार उसकी तरफ देख रही है, तो उसने भी सानवी की ओर सवालिया नजरों से देखा। तभी सानवी को जैसे होश आया और वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। आर्यन हल्की सी स्माइल के साथ पूल में उतर गया, जबकि सानवी के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं।